नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हिंदूराव अस्पताल और चिकित्सा तथा नर्सिंग महाविद्यालय का दौरा किया। संस्कृति मंत्रालय ने यूट्यूब के साथ आज समझौता किया। भारतीय रेल ने प्रभु श्री राम से जुड़े पवित्र स्थलों की यात्रा के लिए श्री रामायण यात्रा विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने संगम विहार में अवैध एलपीजी रैकेट का भंडाफोड़ कर 183 गैस सिलेंडर बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। और दिल्ली मेट्रो ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हिंदूराव अस्पताल और चिकित्सा तथा नर्सिंग महाविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने रोगियों, चिकित्सा अधीक्षक और कर्मचारियों के साथ बातचीत के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नर्सिंग प्रशिक्षण को वैश्विक मानकों और कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाकर स्वास्थ्य कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुशलता प्रदान की जा सकती है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के उपाध्यक्ष जोहानस जुट से आज भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक में शहरी नवीनीकरण, शिक्षा, स्वच्छता और कौशल विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक विशेषज्ञता के उपयोग और साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सतत विकास और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृति मंत्रालय ने यूट्यूब के साथ आज समझौता ज्ञापन किया। इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दुनिया भर में भारत की समृद्ध और विविध संगीत परंपरा का प्रसार करना है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक लोक और जनजातीय संगीत को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री शेखावत ने कहा कि ये पहल वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर वोकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। श्री शेखावत ने विषय सामग्री निर्माण और उसके प्रसार में यूट्यूब की सराहना की। भारतीय रेल ने प्रभु श्री राम से जुड़े पवित्र स्थलों की यात्रा के लिए श्री रामायण यात्रा विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ी 30 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी। एक रिपोर्ट।
ये पहल देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके माध्यम से तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस विशेष यात्रा का संचालन IRCTC द्वारा भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटन रेलगाड़ी से किया जाएगा। रेलवे ने बताया कि ये यात्रा 17 दिन में पूरी होगी, जिसमें श्रद्धालु भगवान श्री राम से जुड़े हुए प्रमुख स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, नेपाल का जनकपुर, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, श्रृंगवीरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि श्री केजरीवाल की प्राथमिकता दिल्ली वासियों की जान बचाना नहीं बल्कि शीश महल बनाना था। मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान दिल्ली में आवश्यक अस्पताल, ऑक्सीजन और ICU बेड नहीं बनाए गए। मंत्री ने कहा कि अगर 58 करोड़ रुपए शीश महल पर खर्च ना किए गए होते और इसे ICU वेंटिलेटर पर लगाया गया होता तो दिल्ली में हजारों जानें बचाई जा सकती थी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली नगर निगम के मुख्य कामों और उसकी प्रगति की समीक्षा की। श्री संधू ने पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विशेष रूप से कचरा प्रबंधन, सड़क मरम्मत, धूल नियंत्रण और नागरिकों तथा मीडिया के उठाए गए मुद्दों के समाधान के साथ प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने संगम विहार इलाके में एक अवैध एलपीजी रैकेट का भंडाफोड़ कर डिलीवरी एजेंटों के गोदामों से कुल 183 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। इनमें से 154 सिलेंडर भरे और 29 खाली थे। पुलिस ने रीफिलिंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने की मशीन, लोहे के पाइप और छड़ी भी बरामद की हैं। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि सभी आरोपी एक अधिकृत गैस एजेंसी के पंजीकृत डिलीवरी कर्मी हैं और वितरण की आड़ में एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण और रीफिलिंग में शामिल थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अनधिकृत खिताबों की रैकेट का भंडाफोड़ कर एक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान 20,000 से अधिक किताबें जब्त की गई। इसके अलावा 2 प्रिंटिंग मशीनें, 4 अनधिकृत किताबों के नेगेटिव और कॉपीराइट सामग्री की छपाई में प्रयुक्त 12 प्रिंटिंग प्लेट्स भी बरामद की गई हैं। आरोपी अवैध छपाई से लेकर वितरण तक पूरे नेटवर्क में सीधे तौर पर शामिल था। पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक सप्ताह तक चलने वाला इस महोत्सव दुनिया भर की 130 से अधिक फिल्में प्रदर्शित करेगा।
इस महीने की 31 तारीख तक चलने वाले इस महोत्सव में 47 देशों की 130 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 101 देशों से 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से यह चयनित यह फिल्म महोत्सव इसकी वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। महोत्सव की शुरुआत प्रसिद्ध फिल्म मेकर ओलिवर लैक्स की ऑस्कर नामांकित रोड फिल्म सीरत से होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संकेत देती है। यह महोत्सव सिंगापुर के निर्देशक तान सीयू की प्रभावशाली फिल्म अमीबा के साथ समाप्त होगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए फिल्म निर्माता भार्गव सेकिया ने दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी फिल्म बॉक्सी इस महोत्सव में प्रदर्शित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बड़े पैमाने पर फिल्म दिखा सकते हैं।
मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ और हमारे लिए ऐसे जो इवेंट्स होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यू नो लाइक फॉर अस लाइक आर एवेन्यूज फॉर शोकेसिंग आवर फिल्म्स आर वेरी लेस इन इंडिया और दिल्ली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड।
इस फिल्म महोत्सव में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रहेंगी, जिनमें विकी कौशल, हेमा मालिनी, भूमि पेडनेकर समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। यह फिल्म महोत्सव आने वाले वर्षों में सिनेमाई संवाद, रचनात्मकता और सहयोग के लिए गतिशील मंच के रूप में उभरने का लक्ष्य रखता है। सौम्या के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली मेट्रो ने रंगमंच, कला और सांस्कृतिक जागरूकता को प्रोत्साहन देने के लिए आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो विद्यालय को विभिन्न मेट्रो परिसरों में जागरूकता अभियान, रंगमंच आधारित संवाद सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधा प्रदान करेगा। इसमें नुक्कड़ नाटक, कहानी सुनाना और अन्य प्रारूप शामिल होंगे। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इस विधेयक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान है। सदन में आज वित्त विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये वित्त विधेयक मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और सरकार ने 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी है।
हमने 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। क्या इससे छोटे परिवारों, आम नागरिकों को लाभ नहीं होगा, जिनके परिवार के बुजुर्ग या सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और जिन्हें ये महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं?
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में कोविड के बाद लगभग 1024 नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने विश्वसनीय यात्रियों को निर्बाध टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी रोकने के उपाय किए हैं।
जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज्यादा फेक अकाउंट हटाए गए और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक साथ टिकट बुक कर देते थे, वो करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को कन्फर्म टिकट मिलने लगा है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर आई सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि श्री केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। वहीं पंजाब के बिगड़ते हालात पर भी सदन में आम आदमी पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। आज फिर विधानसभा अध्यक्ष को ईमेल भेजकर विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसकी जांच की गई और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पहलुओं की जांच के निर्देश दिए। विधानसभा में बजट के दूसरे दिन विधायकों ने अपने इलाकों से संबंधित मामलों को शून्यकाल में उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि 8 करोड़ रुपए का टेंडर बढ़कर 62 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गया, इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक गड़बड़ियां तब बढ़ी जब एक ही काम के लिए कई कंसल्टेंट रखे गए और बिना टेंडर प्रक्रिया के ठेके दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब मुख्यमंत्री अपने लिए ये आवास बना रहे थे। सदन की शुरुआत में शून्यकाल के दौरान भाजपा के विधायक डॉ अनिल गोयल ने पूर्वी दिल्ली सांस्कृतिक केंद्र को पट्टे पर देने को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर यहां सीबीडी ग्राउंड में एक सेंटर बनाना था, लेकिन वहां बैंक्वेट हॉल ग्राउंड बना दिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। बाद में इसी मुद्दे पर ओम प्रकाश शर्मा ने भी आम आदमी पार्टी पर कहा कि ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने पशु चिकित्सालय की स्थिति सुधारने की मांग रखी, तो वहीं पटपड़गंज से विधायक रविन्द्र सिंह नेगी ने डीडीए की जमीनों पर हो रहे कब्जों को छुड़वाने की मांग रखी। संगम विहार से विधायक चंदन कुमार चौधरी ने इलाके में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर दिल्ली नगर निगम की पार्किंग की वजह से होने वाली परेशानी की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए कहा कि ये पार्किंग सुविधा से ज्यादा असुविधा बनी हुई है। ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय ने इलाके में अंडर पास बनवाने की मांग रखी। नजफगढ़ से भाजपा विधायक नीलम पहलवान ने कृषि योग्य भूमि के सर्किट रेट बढ़ाने की मांग रखी। साथ ही विधायक गजेंद्र सिंह दराल ने मुंडका क्षेत्र में अस्पताल न होने का मुद्दा उठाया और बताया कि कंझावला में 6 एकड़ जमीन पर 100 बिस्तर का अस्पताल बना है, लेकिन वो व्यवस्थित होकर नहीं चल रहा है, जिसके कारण यहां पर इमरजेंसी सुविधाओं को शुरू किया जाए। नरेला से विधायक राजकरण खत्री ने यमुना में हो रहे अवैध रेत खनन की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। वहीं विधायक अजय महावर ने सीवर की गाद निकालकर सड़क पर फेंकने का मामला उठाते हुए जल मंत्री से गाद निस्तारण के लिए पूरी प्रक्रिया बनाने का मुद्दा उठाया। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हिंदू राव अस्पताल और चिकित्सा तथा नर्सिंग महाविद्यालय का दौरा किया। संस्कृति मंत्रालय ने यूट्यूब के साथ आज समझौता किया। भारतीय रेल ने प्रभु श्री राम से जुड़े पवित्र स्थलों की यात्रा के लिए श्री रामायण यात्रा विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने संगम विहार में अवैध एलपीजी रैकेट का भंडाफोड़ कर 183 गैस सिलेंडर बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। और दिल्ली मेट्रो ने रंगमंच कला और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।